نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں بیٹھنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس وقت میں برکت دے. ہر وہ چیز جو ہمارے یا دوسروں کے سننے کے بیچ میں رکاوٹ بنے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور کر دے. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ انشقاق کی آیت 7 سے 9 رکھی. آئیے دیکھتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ بس بے شک جس شخص کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو ان قریب اس سے جلد حساب لیا جائے گا, آسان حساب. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا. اس ایک آیت اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی مختلف آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک کا حساب ہوگا. میں نے اپنے بچپن سے جب سے آنکھ کھولی یہی جملہ سنا, اللہ نے حساب لینا ہے, حساب دیا جائے گا. کسی کو ایکسٹرا پانی بہاتے دیکھیں تو بھی کہتے ہیں دیکھو حساب ہوگا. بہت ہی ہمارے خاص طور پہ کلچر میں اس چیز کا احساس الحمدللہ شروع سے دلایا جاتا ہے کہ حساب ہوگا, اور یہ حقیقت ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم سے ہر نعمت کا حساب ہوگا. حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ کئی دن کے بھوکے تھے اور اللہ کے نبی کے ساتھ کسی باغ میں آئے تو جو صاحب باغ تھا اس نے کھجوریں یا انگور پیش کیے تو انگور کھانے سے قریب تھے کہ ہاتھ سے چھوڑ دیا. پوچھا کیا ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے ایسے لگا کہ اللہ مجھے ساری زندگی کی نیکیوں کے بدلے میں قیامت کے دن یہ کہہ دے گا کیا عمر تیری ساری زندگی کی نیکیوں اس کے بدلے میں میں نے تجھے اس گرمی کی دوپہر میں یہ پھل کھلا دیا, ٹھنڈا پانی پلا دیا, تو میرے ہاتھ میں کیا رہے گا. مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام جو تھے وہ حساب کتاب سے بہت ڈرتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ بھی اپنے اوپر لے کر سوچیں, ہم بھی اپنے بچپن کو دیکھیں, شروع سے بچپن سے حساب کا مضمون بہت مشکل لگتا ہے. اکثر بچے حساب کے پیپر میں فیل ہوتے یا اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں. کوئی آپ سے مجھ سے چند روپوں کا حساب لے لے, کسی کی گاڑی, کسی کا فون, کسی کی چیز یوز کر لے تو خوف لگا رہتا ہے کہ یہ خراب نہ ہو, اس میں مسئلہ نہ ہو. ذرا امیجن کیجئے کہ قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ کس فارم میں ہوگا. بعض دفعہ ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم سب مل جل کے حساب دے لیں گے. جیسے مل کے کہیں گئے, چلو مل کے ساتھیوں نے کوئی کام کیا تو کسی نے کچھ کر دیا, کسی کو ادھر سے بولا, کوئی ادھر سے بولا, جیسے ایک ٹیم ورک ہے. تو پہلی بات تو حساب کتاب کے لیے آج لکھ لیجئے کہ حساب کتاب ٹیم ورک میں نہیں ہوگا, فیملی بیسڈ نہیں ہوگا, خاندان بیسڈ نہیں ہوگا, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ مریم کی آیت 95 میں فرماتے ہیں وَكُلُّهُمَا آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. امیجنیشن میں لائیں, ان نون پلیس ہے, آپ اکیلی کھڑی ہیں اور اللہ کی پکار ہے کہ سب لوگ قیامت کے دن تنہا تنہا حاضر ہوں گے. آپ کبھی کسی ایسے ملک میں گئے ہوں جہاں پہلی دفعہ گئے ہوں, ان نون کنٹری گھومنے گئے, اس کو میں اس چیز سے بہت ریلیٹ کر پاتی ہوں. آپ دیکھیں اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں آپ بہت ریلیکسڈ ہوتے ہیں, فیملی ساتھ ہے اور بھی ریلیکسڈ ہوتے ہیں. آپ کو ٹرکی جانا ہے, آپ کبھی نہیں گئے, آپ اکیلی رہ گئیں, کوئی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے, کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے, آپ کہتے ہیں اس ملک میں میں اکیلی ہوں, امیگریشن سے میں نے اکیلے گزرنا ہے, سامان میں نے اپنا خود لینا ہے, باہر سے میں نے خود رابطہ کرنا ہے, تو ایک خوف آتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کا میرا حساب تنہا ہوگا, اور اس دن مجھے آپ کو ہماری زندگی کے سارے اعمال دکھائے جائیں گے. ہم سوچتے ہیں دنیا میں کچھ دکھا دیے کچھ نہیں, نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شرعی یرا. سب کو آیت آتی ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی قیامت کے دن وہ بھی دکھایا جائے گا, اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی دکھے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب پہلا اس آیت کا نازل ہوا تو ہم خوش ہو گئے, وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی نظر آئیں گی, لیکن بعد میں کہا چھوٹے چھوٹے گناہ بھی دکھیں گے تو اس کے بعد تو ہم پریشان ہی ہوں گے. تو یاد رکھیے کہ ایمان جتنا زیادہ ہوگا حساب کتاب کا فکر اتنا ہی ہوگا. حساب کتاب کے وقت انسانوں کی عمومی حالت کیا ہوگی؟ یہ سیکنڈ کوسچن. سورہ زلزال آیت 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. اس روز لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور ان سب کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے. اور یاد رکھیے کہ امت مسلمہ کا حساب سب سے پہلے ہوگا، دنیا میں آنے والی آخری امت، اور دنیا میں سے جا کر جنت میں داخل کیے جانے کے اعتبار سے پہلی امت ہوگی. ظاہری بات ہے لائن میں جو پہلے لگ گیا اس کی کلیئرنس جلدی آئے گی نا. تو قیامت کے دن امت مسلمہ کا ایک خاص اکرام ہوگا. اور یاد رکھیے کہ حساب کتاب کے درمیان اللہ سے ہر بندے کا اپنے اوپر لیں، بالکل اس وقت اگر آپ کر سکیں زیوم تو اپنے آپ کو وہاں لے جائیں. کوئی بہت بڑا میدان، کوئی امیجینیشن میں جو چیز آتی ہے تو پھر وہاں کھڑے کر کے خود کو سوچئے، حساب کتاب لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے، جس میں میں بھی ہوں، بغیر ترجمان، بغیر حجاب کے براہ راست سوال جواب کریں گے. کبھی دنیا میں حساب ہوا ہمارا؟ ہوتا. امیگریشن کا نام حساب کتاب ہی ہے. آپ کو پتا کہ جب ہمیں مختلف ملکوں کی نیشنلٹی ملتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو اپنی مثال دے سکتی ہوں. جب امریکن پاسپورٹ کے مراحل سے ہم گزر رہے تھے تو ہر جگہ مجھے اللہ کے حکم سے پتہ بھی نہیں، میرے ہسبینڈ نے سب جگہ کرا اور ہو کے، اور شاید ایک دفعہ پہلے کہیں جا کر فنگر پرنٹ ہونے تھے، دیٹس اٹ. لیکن اس پروسیس میں ایک آخری مرحلہ ایسا ہوتا ہے ڈفرینٹ 2-3-4 سالوں کے پروسیس میں کہ آپ کو ایک ایسی جگہ لے جاتے ہیں، بس اس کے بعد آگے نہیں جا سکتے. میرے ہسبینڈ باہر، میں اندر. وہ اندر جا کے کیبنز میں آپ سے پرسنلی کوسچن کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک حساب دیا ہوتا ہے، مے بی 100 کوسچن جو امریکہ کے ماحول اور اس کے متعلق ہے، تو وہ سوال جواب پوچھنے تھے. مجھے یقین کریں اس وقت صرف ایک وحشت تھی کہ میرے ہسبینڈ میرے پاس نہیں ہوں گے. مجھے یہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا نہیں، لیکن وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی. لیکن الحمدللہ جا کے تھوڑی دیر بیٹھے، ریلیکس ہو، اس نے 2-4 باتیں پوچھی. جب میں باہر آئی، 10 سوال پوچھتے ہیں وہ، تو میرے 10 میں سے 9 ٹھیک تھے. تو وہ باہر آ کے میرے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ تم نے اس کو بڑی اچھی تیاری کروائی ہے. یعنی وہ اصل میں امریکہ کے حساب کتاب، ان کی پارلیمنٹ اور ادھر کے کوسچن تھے. لیکن اس وقت جو میں بتا رہی ہوں، میری فیلنگس، تنہا، اکیلے، ایئرپورٹ پہ بھی تو ایک ایسا وقت آتا ہے نا جہاں کہتے ہیں پیسنجرز اونلی، مجھے وہاں سے قبرستان یاد آ جاتا ہے. 10 لوگ آپ کو چھوڑنے گئے ہوں، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے. پھر آپ ہاتھ ہلائیں، ونڈو سے دیکھیں، وہ دور سے دکھ رہے، لیکن کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. آپ میں، دنیا میں ہم کتنے ہی لوگوں کے بیچ میں رہیں، قیامت کے دن کوئی بیچ میں نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے، براہ راست اللہ ہم سے بات کرے گا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کے روب اور اس کے جلال کو دل میں محسوس کریں تو آج ہمیں اس کی فکر کرنی پڑے گی. پھر یاد رکھیے کہ حساب جب شروع ہوگا نا تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. یہ اللہ کے حقوق ہے، اللہ تعالیٰ حساب پوچھے گا نماز کا. یہ سب کے پیچھے ریفرنسز ہیں، لیکن میں صرف آپ کو اپنے آپ کو امیجینیشن کے ساتھ اس حساب کے میدان میں لے جا رہی ہوں کہ ہم اس دنیا کے فکروں، تفکرات میں کبھی اس دن کے تفکرات اور ان کے فکروں کو بھی سوچیں وہاں کیا ہوگا. اور جس کی نماز درست ہو جائے گی سنت کے مطابق، خشوع خضوع والی، معرفت والی، ایمان والی، اللہ تعالیٰ اس کے باقی حساب آسان کریں گے. ہم جب پیپرز دیتے تھے تو عموماً ہمارے ذہن میں ایک تھا کہ پہلا سوال بڑا اچھا اٹیمپٹ کرو. ٹیچر جو چیک کر رہا ہوتا ہے نا، ایگزامینر، پہلا سوال اچھا ہو، باقی کہتا ہے اگلے بھی اچھے ہی ہوں گے، ٹک کر دو. اور اگر پہلے میں غلطی ہوں تو باقی میں بھی مشکل ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں بندے کے حساب دیکھیں گے نماز کے ساتھ. اور اس کے بعد جب حقوق العباد شروع ہوں گے تو یاد رکھیے، انسانی معاملات میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا. خون کے مقدمات سب سے پہلے قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے. اور کسی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیکی اور بدی نہیں چھپے گی. پھر ایک اور چیز محسوس کیجئے، بند کمروں میں کی گئی سازشیں، خفیہ باتیں، راز کی باتیں، ان کا بھی حساب ہوگا. سورۃ طارق آیت 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبل السرائر، جس دن دلوں کے پوشیدہ راز اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے اللہ کی عدالت میں اور تمہارا کوئی راز نہیں چھپا رہے گا. سورۃ الحق آیت 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امیجن کریں کتنی دفعہ دن میں کہتی ہوں یہ کسی اور کو نہ بتانا، کتنی دفعہ دوسروں کے سامنے پیش کرتی ہوں، وہاں نہیں چھپ سکتا. جیسے اسکینر میں سے بیگ گزرتا ہے نا تو آپ کے اندر کے چھپے ہوئے تار بھی اور کوئی پیچ ہے کچھ ہے وہ بھی دکھ جاتا ہے. کبھی آپ نے اس کی اسکرین کو دیکھا ہو، اتنا وہ اسکیٹرڈ سا دکھ رہا ہوتا ہے، आपकी चीज़ें हैं लेकिन उनको वो इस तरह दिखता है कि ये एक्सरे ले लीजिए, अंदर से जिस्म की हड्डी बोटी तक नज़र आ जाती है और जो दिखेगा उसको फिर वहाँ स्क्रीनों पे पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला सूरत आदियात आयत 9 और 10 में फरमाते हैं, अफला यालम, क्या तुम नहीं जानते या क्या नहीं इंसान जानता, इज़ा वो सिरा माफिल कुबूर, जब निकाल खड़ा किया जाएगा जो कब्रों में है, वह हुस्सिला माफिस सुदूर, और हासिल किया जाएगा जो कुछ सीनों में। क्या होता है सीनों में? नफ़रत, बुग़्ज़, मोहब्बत, प्यार, कीना, हसद। आज हम इंसानों के बीच में रहते हैं, वल्लाही अगर हमारे जिस्म शीशे के होते और हमारे अंदर की चीज़ें हमारे इर्द गिर्द वाले देखते तो शायद हमसे बात भी ना करते। मुंह पे प्यार मोहब्बत की बातें करने वाले, सामने कुछ पीछे से कुछ कहने वाले, शायद हमारा असल रूप देख लेता तो हमसे सलाम भी ना करना चाहे। लेकिन ये अल्लाह की शान है कि उसने दुनिया में ये चीज़ें हमारे सामने रखी। फिर उसके बाद याद रखिए कि मरने के बाद आपने मैंने अपने पीछे भी जो नेकी और बदी छोड़ी उसका भी हिसाब होगा इंशाल्लाह। इसमें हम नेक्स्ट डेज में करने वाले हैं कि बाकी रहने वाली नेकियाँ। लेकिन ये हकीकत है, आज आप मैं यहाँ आए, हमें आज का दिन नज़र आ रहा है, लेकिन आज के इस दिन से अगर कोई नेकी पीछे चल पड़ी तो क़यामत के दिन उस नेकी का हिसाब होगा। इस महफिल के अहतमाम करने वालों के नामे अमाल में वो नेकी भी जारी होगी। सूरत क़यामत आए 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, युनब्बाउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम वअख़्खर, उस दिन इंसान को ये ख़बर दी जाएगी जो उसने आगे छोड़ा और पीछे छोड़ा। और इसमें तो आप सबको आयत आती होगी सूरह यासीन आयत 12, जो मेरा ख्याल है हमारे कल्चर में सबसे ज़्यादा सूरत पढ़ी जाती है वो सूरह यासीन है। उसमें भी अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, मा क़द्दमु व आसारहुम व कुल्ल शैइन अख़्ज़ैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन, जो इन्होंने आगे छोड़ा जो पीछे छोड़ा, और हर चीज़ को हमने एक रोशन किताब में लिख दिया है। हत्ता कि यहाँ तक आता है किसी को एक नाहक थप्पड़ भी मारा होगा किसी ने तो उसका भी हिसाब होगा। एक कोड़ा हदीस सुनाऊंगी आपको ज़रूर, क्योंकि इस कल्चर में रहते हुए हमें मेड्स का और मासियों का और लड़कों का भी हिसाब देना पड़ेगा जो अल्लाह ने हमारे पास खिदमतगारों की सूरत में दिए हुए हैं। फरमाया कि अगर किसी ने अपने नौकर को एक कोड़ा भी मारा और नाजायज़ मारा तो इसका भी हिसाब लिया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा की ये रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने ग़ुलाम को एक कोड़ा मारा, क़्यामत के रोज़ उसको भी उसका बदला दिलाया जाएगा। या तो ग़ुलाम को कहा जाएगा तुम इसको मार लो, या ग़ुलाम की नेकियाँ इसको दे दी जाएंगी, या उसके गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे। आप सोचिए तीनों में से कितनी मुश्किल बात है। अबू ज़र गफ़ारी ने एक मौके पर अल्लाह के नबी से पूछा कि मेरा एक ग़ुलाम है, तंग करता है, कभी नहीं भी बात मानता तो कभी मैं उसको मार देता हूँ, कभी बुरा भला कहता हूँ, तो क़यामत के दिन उसका और मेरा हिसाब कैसे होगा? तो अल्लाह के नबी ने यही फरमाया कि तेरी और उसकी नेकियाँ बदियाँ तो ली जाएंगी, अगर उसने तुझे जितना सताया वो ज़्यादा था, तेरी मार कम थी तो तू बच जाएगा। लेकिन इसका बरक्स हुआ तो अगर तूने उसकी ज्यादती की नस्बत ज़्यादा उसको बुरा भला कह दिया तो कल तुझे पकड़ा जाएगा। ये बात सुन के अबू ज़र घबराए, कहने लगे अल्लाह के नबी अब मेरे पास इससे बढ़ के और कोई बात नहीं कि मैं इस ग़ुलाम को आज़ाद कर दूँ, यानी मैं क़यामत के दिन ये हिसाब नहीं ले सकता। तो हम सब के लिए ये एक छोटा सा आईना है। हमारे घरों में जो बच्चे बच्चियाँ लड़कियाँ लड़के हैं ना, तो वो हमारे ज़रख़रीद ग़ुलाम है। ग़ुलाम और आज की मासी और मेड और चौकीदार और बाबे में ड्राइवर में कोई रिजेम्बलेंस ही नहीं है। ये आज हमारे हैं कल किसी और के, तो ग़ुलाम तो वो थे जो कहीं जा भी नहीं सकते थे। जब उनका इतना हक़ है तो ये तो हमारे कोई भी ऐसे नहीं, थोड़े से पैसे ही देते हैं ना हम, लेकिन ये हमारी बहुत सारी बातें सुनते हैं। फिर जब हिसाब होगा ना, पीलू की एक टहनी यानी छोटी सी मिसवाक सोचिए, अगर इसके बराबर किसी का हक दूसरे पर निकल आया तो क़यामत के दिन वो उसका भी हिसाब मांगेगा। आज हम बड़े फ़याज़ हैं, मसलन हम होटल में गए खाना खाया, चेंज कीप इट, रख लीजिए, चलो कोई बात नहीं, कोई हमसे पैसे मांगता है थोड़े वापस, नहीं नहीं मैंने वापस नहीं लेने। यानी आज दुनिया में हम अपनी चीज़ें बड़ी खुशी से दूसरों के साथ शेयर करते हैं, क़यामत के दिन कोई नहीं करेगा। लोगों की नज़र होगी कि किसने ज़िंदगी में मेरा इतना सा हक देना था आज मैं दूँ। एक शख्स दूसरे से झगड़ रहा होगा जन्नत के बिल्कुल बाहर, और याद रखिए ये बड़ी अहम बात है जो अभी बताने लगी हूँ, हिसाब किताब के मराहल हैं। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी बुक पढ़ाई हुई है क़यामत का बयान, जिसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। आप बुक पढ़ना चाहें तो इकबाल खिलानी सीरीज़ की क़यामत का बयान लेके पढ़िए, और भी बहुत सी बुक्स हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे हमेशा अपील करती है वो बहुत अहम है, इस पर ज़रा सी नज़र रखिएगा, आपको इमेजिनेशन से देखना पड़ेगा। ये मैदान हशर है, मसलन ये मेरा जो टेबल है आप इसको मैदान हशर समझिए। आमतौर पर हमारे जहनों में क्या आता है कि इधर जन्नत है, राइट हैंड जाएंगे तो जन्नत का एग्ज़िट ले लेंगे, लेफ़्ट जाएंगे तो जहन्नुम आएगी। ऐसा नहीं है, यानी ये दोनों एक लेवल पे नहीं है। जन्नत जहन्नुम, जन्नत ऊपर है, जहन्नुम नीचे है। और जन्नत में जाने के लिए आपको बहुत ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, जैसे हिली इलाकों में फोर व्हील गाड़ियाँ और जीप में सफ़र होता है, जबकि नीचे जाना है ब्रेक से पाँव उठा दें। आज दुनिया में अगर मैं और आप जन्नत के राही हैं, आज मुझे आपको अपनी कोशिश से पता चल रहा है। माजरत के साथ अगर मैं आप में से किसी से भी पूछ लूँ, जो मैं नहीं पूछूंगी अभी इस वक्त, कि आपका क्या ख्याल है, आप कहाँ जाएंगी, जन्नत में कि जहन्नुम में? मैंने जहाँ भी ये सवाल किया और रिलैक्स माहौल में जब टाइम बहुत होता है डिस्कशन स्टाइल में बात करें, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, आई डोंट नो, कुछ कहते हैं मुझे नहीं पता, कुछ कहते हैं पता नहीं, जिधर अल्लाह ने ले जाना है उधर लेगा, और कुछ कहते हैं नहीं हम जन्नत में जाएंगे। अब ये सारी बातों में से आपका दिल क्या कह रहा है आप खुद पूछें, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा दावा करने लगी हूँ, और वो क्या, आपको भी और मुझे भी पता है कि हम कहाँ जाएंगे, और दूसरों को भी पता है। कैसे, मिसाल देती हूँ आपको। आप देखिए कि दुनिया में जब कोई काम होने वाला होता है ना, तो उसके कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, दुनिया में अलामतें दिखती हैं। बस आप देखिए, एक औरत है, प्रेग्नेंट है, बेबी होने वाला है, तो क्या मुझे आपको उसके फिगर से, उसकी मसरूफियात से, उसकी बातों से नहीं दिखता, पता चल रहा होता है? उसको नौजिया होगा, उसको ड्रॉजीनेस होगी और वीक होगी, फिर ऐसे उसका वेट गेन हो रहा है, हर एक को पता लग रहा है इस घर में बेबी होने वाला है। अब ये सारी सिम्टम्स हों और आप पूछे बेबी कब हो रहा है, वो कहेगी मेरे तो नहीं हो रहा बेबी, तो हम कहेंगे छुपा रही हैं। और कोई भी सिम्टम ना हो और वो कहे मेरे बेबी हो रहा है, तो कोई भी नहीं मानेगा। दुनिया में खुशी वाले घर के बाहर से पता चल जाता है इधर को खुशी आने वाली है। आपने ट्रेवल करना है, आपने अमेरिका जाना है, आपका वीज़ा लेना, पासपोर्ट लेना, सूटकेस लेना, शॉपिंग करना, तैयारी करना, बता रहे हैं आप ट्रेवलिंग वाले हो रहे हैं। जब दुनिया में हर काम करने के दुनिया में असरात दिखते हैं, ये कैसे हो सकता है, आखिरत की कौन सी ट्रेन लेनी है, कैसे फिर पता चलता है? नंबर एक, हमारी मसरूफियात से। हम किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, हमने जन्नत का टिकट लिया हुआ है कि जहन्नुम का लिया हुआ है? और याद रखिए, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, साथ ही इबलीस का किस्सा आप सब ने कुरान में बारहा पढ़ा होगा, 9 दफ़ा ये किस्सा कुरान में है। चौथे ही रुकू में आप सूरत बकरा में पढ़ते हैं, अल्लाह ने ये मैसेज दे दिया, वह इस काल रब्बुका लिल मलाइका तो इन्नी जाइलु फिल अर्दी खलीफा। उस वाक्य के एंड पे क्या आता है, फ़ैम यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबी खुदाया फला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि आदम को एक छोटी सी भूल की वजह से दरख्त का फल चख लिया, जो भी अल्लाह ने मना किया था, यानी प्रोहिबिटेड ट्री से कुछ चख लिया, एक सिंबल था कि इस दुनिया में आने के बाद असल चीज़ जिससे मैंने आपने डरना है वो अल्लाह की नाफरमानी है। एक दरख्त का फल चखा था आदम ने, शराब का घूंट तो नहीं भरा, कोई हराम चीज़ तो नहीं थी, अल्लाह का हुक्म था बस कि ये नहीं खाना, और उसकी वजह से अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। जब रोए धोए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, अल्लाह ने ऐसा नहीं कर दी कि आपकी मैंने तौबा कबूल की। जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया, फ़ताब अल्लाह अलैह, तो अब अगला सवाल आदम का क्या था कि फिर अब वापस जन्नत में भेज दें? ऐसे ही होता है ना, माँ बच्चे से नाराज़ होकर उसका खिलौना छीन लेती है और साथ कहती है मेरे से बात नहीं करना, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। फिर बच्चा रोता है, धोता है, फिर माँ कहती है अच्छा चलो जाओ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं अब। तो बच्चा फ़ौरन क्या कहता है, फिर मामा वो खिलौना तो दे दो। ऐसी ये तो फितरी बात है। तो आदम ने जब दोबारा जन्नत का मुतालबा किया, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, बनी फ़ाइम मयातियन्नकुम मिन्नी हुदन, असल में अब जन्नत का ट्रैक क्या है, अब जब तुम्हारे पास आएगी मेरे पास से हिदायत, फिर जिसने हिदायत की पैरवी की और उस पर चला, फिर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो जन्नत का ट्रैक क्या, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी हुदन लिलमुत्तकीन, यही है हदीनस सिरातल मुस्तकीम, ये कुरान का रास्ता, अल्लाह की मर्ज़ी का रास्ता, ये है जन्नत का रास्ता। तो लिहाजा जब आप मैदान हशर से जन्नत में जाना चाहते हैं या जहन्नुम में, अब इसको मैं सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में ये बात अक्सर समझा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे बहन भाइयों के जहनों में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप देखिए कि एक मैदान हशर सब जमा हो गए, आप मैं अगले पिछले सब, ये जहन्नुम है और वहाँ पर जन्नत है, और वाइम मिन को मिल्ला वारिदुहा, ये जहन्नुम के ऊपर एक ब्रिज है, यहाँ से आपने मैंने जिसने मैदान हशर से जाना है इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, लेकिन हम सब को जहन्नुम के इस पुल के ऊपर से गुजरना है, और इस पुल के ऊपर से गुजरने से पहले इसी मैदान में सारे हिसाब किताब, ये जो कुछ बता रही हूँ छोटी छोटी चीज़ें, ये इधर शुरू होंगी। अब इसके ऊपर से गिरना फिसलना वो सब ने पुलसरात की सिचुएशंस पढ़ी, आज वो मौजू नहीं, अब यहाँ पहुँच गए, ये जो बात शुरू की थी ये, अब यहाँ जन्नत है। ये जो आखिरी कोना है ना पुलसरात का, इसका नाम है कंतरा। और आप कहते हैं कंतरा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि इस जगह पे हकुकुल इबाद का मामला होगा। यहाँ से बच गए आप सब हो गए, अल्लाह ने आपको पुलसरात से भी बचा दिया। भाग रहे हैं, अल्लाह ने किसी को बिजली की तेज़ी से, किसी को हवाओं की तेज़ी से कर करा के जन्नत तक पहुँचा दिया, लेकिन जन्नत के दरवाजे पर आप खड़े हैं। यहाँ आपके पास कोई दूसरा आ जाएगा, वो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, वो आपका कोई दूसरा इंसान जिससे ज़िंदगी में आपका मामला पड़ा और आपका कोई हक या उसका कोई हक आपके ऊपर है। यहाँ लोग लड़ रहे होंगे, यहाँ खड़े होके कह रहे होंगे हिसाब दो। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं अपनी आंख से देख रहा हूँ कि यहाँ दो आदमी खड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं, एक दूसरे से कहता है कि तुमने ज़िंदगी में मेरे साथ ज़्यादती की थी, मुझे नेकी दो। वो कहेगा तुम्हें कैसे दूँ, अगर तुम्हें दे दूँगा तो मुझे जन्नत नहीं मिलनी। इस बहस में होंगे कि ऐसों को अल्लाह ताला बुलाएगा या फरिश्ते के ज़रिए जो भी मामला होगा। दूर से जन्नत में एक महल होगा सफ़ेद रंग का, कहेगा वो महल देखो। पहले उसको बुलाएगा जो हक मांग रहा है, अल्लाह ताला पूछेंगे ये महल तुम लेना चाहते हो? वो कहेगा लेना चाहता हूँ, तभी तो इससे कुछ और भी मांग रहा हूँ कि मेरे पास कुछ करेंसी और जमा हो जाए। तो अल्लाह ताला कहेंगे अगर तुम इसको माफ़ कर दो तो वो महल तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा मैं इसको माफ़ करता हूँ। जो ही वो उसको माफ़ करेगा, ये माफ़ करने की वजह से, और वो दूसरा जो इसी जुर्म की वजह से रोका जा रहा था वो भी माफ़ हो जाएगा। दोनों हाथों में हाथ डाल के उस महल में जाएंगे और अल्लाह के नबी मुस्कुराए कि आपकी बाँछें खुल गई। अल्लाह ने हम सब को याद रखे जन्नत देनी है, लेकिन इसके लिए मुझे आपको आज फिक्र करनी है। अल्लाह ताला कभी नहीं चाहते कि हम आग में जाएं। मा यफ़ुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, सूरत निसा में पढ़िए पाँचवें पारे की आखिरी आयत है, मा यफ़ुल्लाहु, क्या करेगा अल्लाह तुम्हें अज़ाब देके? क्या कोई माँ अपने बच्चे को आग में डालती? देखिए आप में से जितनी भी माएँ हैं, माँ नहीं है तो हमने माएँ तो देखी है ना, माँ का प्यार आप सबको ही पता है। जब माँ बच्चे को आग में नहीं डालती तो क्या अल्लाह 70 माँ से ज़्यादा प्यार करने वाला डालता? इसके लिए वो फिर दुनिया में हमें मुख्तलिफ मराहिल से गुजारता है, क्योंकि हिसाब किताब लेना देना कोई आसान बात नहीं। हम सोचते हैं ये सारा वहाँ जाके होगा, नहीं। थोड़ा सा मैं आपके सामने इसको रखना चाहती हूँ। पहली बात, जैसे माँ बच्चे को मना करती है बुरा काम नहीं करो, बच्चा फिर करता है, फिर चोट लगती है। पहले कहती है तुम्हें नहीं बचाऊँगी, लेकिन फिर माँ को तड़प लग जाती है, वो बचाती है, डॉक्टर पे ले जाएगी, कुछ करेगी, फिर समझाएगी बेटा ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते। आप उसी को अपने जहन से ले लीजिए कि सबसे पहले क्या होगा, दुनिया में आप और मैं ना चाहते हुए भी गुनाह करते हैं। जैसे बाहर चले पाँव पे मिट्टी पड़ी ना, जितना मर्जी बचेंगे फिर भी मिट्टी पड़ेगी। पहला मरहला क्या है अल्लाह के हिसाब लेने का, कि दुनिया में इंसान के बहुत सारे गुनाह रात जाते ही माफ़ कर देता है। जैसे जिस्म से बाल झड़ जाते हैं, स्किन झड़ती है, बाल उतरते हैं ना, पलकें गिरती हैं हमारी, फर्स्ट स्टेप अल्लाह के हिसाब का मेरे आपके साथ क्या के ओवरलुक, जस्ट फॉरगिव, फॉरगेट, बिकॉज अल्लाह इज़ मर्सीफुल, गफूर रहीम है वो, उसका नाम बड़े प्यार वाला है। मुझे आपको पता ही नहीं होता हम अपने कई गुनाहों के हिसाब में पकड़े जाते, लेकिन अल्लाह ने माफ़ कर दी। ये है सबसे आसान तरीका। सेकेंड फेज जब हिसाब का आता है तो क्या होता है, हम एक नेकी करते हैं दूसरी नेकी तक, मतलब फजर से जोहर, जोहर से असर, असर से मगरिब, दो नमाजों के बिटवीन जो गुनाह होते हैं, लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म से शऊर के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारी नेकियों की वजह से वो गुनाह झाड़ देते हैं। इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। आपने फरमाया अपने एक सहाबी को कि जब तेरे से कोई गुनाह हो जाए ना तो उसके पीछे किसी नेकी को लगा दे तो वो तेरी नेकी तेरे गुनाह को मिटा देगी। दुनिया में भी ऐसे ही है। देखिए घर में गन पड़ता है फिर आप पीछे वैक्यूम करते हैं, बच्चे फैला रहे हैं आप साफ़ करें, घर साफ रहता है, सबको पता। कपड़े पहनते हैं गंदे होते हैं, जाते हैं शावर लेते हैं दूसरा पहन लेते हैं। दुनिया में जिस तरह मेरे आपके साथ हो रहा है ना, तो हमें अल्लाह ने नेकियों के सूरत में मौके दिए हैं। इसीलिए देखिए नमाज अहम है। नमाज असल में हमारी प्यूरिफिकेशन है और नमाज हमें गुनाहों से पाक करती है। बहरहाल इसी तरह और नेकियाँ जो करते हैं, ये सेकेंड फेज़ होता है। थर्ड फेज़ क्या है कि अभी भी गुनाह बाकी हैं, यानी बंदा गुनाह कर ही रहा है, मज़ा ही आ रहा है उसको, तो फिर अल्लाह ताला उस पर कोई मुसीबत डालता है। ये बड़ा मुश्किल मरहला, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, हत्ता के कांटा चुभना। हदीस में आता है कि एक हाथ किसी जेब में डाला और उधर से आपको चीज़ नहीं मिली और चंद सेकंड के लिए दिल में ख्याल आया कि वो खो गई, लेकिन दूसरी जेब में डाला तो उधर से मिल गई। इतने में भी अल्लाह बंदे का एक गुनाह झाड़ के उसको नेकी दे देता है। तो जो बीमारियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, कभी आपका दिल ऐसे ही परेशान हो जाता है, होता होगा, आप सोच रहे खुश हो कि मेरा कोई गुनाह चढ़ रहा है। और इस पर इतनी मोटी बुक हमने पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फजलाई साहब की कि मुश्किलात से कैसे निपटें। मेरा ख्याल है हर घर में वो बुक होनी चाहिए। ऑडियो सुन लें, वेबसाइट पे मौजूद है, आपने पढ़नी है तो शौक़ से पढ़ के देखें कि हमें यकीन करें कोई दूसरा मुजरिम ही नहीं नज़र आएगा, सबसे बड़ा हमारा अपना ही नज़र आएगा कि हम जो गुनाह कर रहे हैं अल्लाह की मोहब्बत है कि वो हमें पाक करता है। फिर उसके बाद आप देखिए थर्ड फेज़ गुजर गया, फोर्थ फेज़ अभी भी बंदे के ऊपर गुनाह, तो चौथे मरहले में अल्लाह ताला फिर नज़ा की सख्तियों में डालता है। बाज़ दफ़ा नेक लोगों पे भी नज़ा बड़ी सख्त होती है और बाज़ दफ़ा गुनाहगारों पे तो होती है। उस वक्त क्या हो रहा होता है, जो रहे सहे गुनाह माफ़ रहे होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन को सबसे आखिरी तकलीफ़ जो आती है वो उसकी मौत की घड़ी होती है। नबी सल्लम पे कितनी ज़्यादा सख्त नज़ा थी, आपने तो जुर्म नहीं किए थे, आप तो मासूम थे, वजह क्या, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद कर रहा था। लिहाजा कभी भी किसी को नज़ा के आलम में देखे ना तो कभी फतवा ना दें। हम क्या करते हैं, दूसरे को देखे कहते हैं गुनाहों की सजा काट रहा है, और अपने ऊपर कोई मुश्किल आ जाए कहते हैं मेरे तो दर्जे ही बुलंद होने हैं, मैं तो नेक ही बड़ी हूँ, अल्लाह इसलिए मेरे पे मुश्किलात लाते हैं। नहीं, एक असूल लिख लें बस, ये एक मौजू नहीं है लेकिन इस वक्त एक असूल लिख लें। लोग सवाल करते हैं कैसे पता चले कि जो मुसीबत आई है ये हमारे किसी गुनाह की सजा है या अल्लाह ने हमें किसी खैर से नवाजना है, तो उसका जवाब अपने ऊपर आए तो सोचे मेरा गुनाह, क्योंकि वमा असाबकुम मिन मुसीबत इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हें जो मुसीबत आती है तुम्हारे अपने हाथों का किया था। और दूसरे पे आए, किसी को देख रहे हैं बीमारी में, परेशानी में, दुख में, तो कहें नहीं ये नेक बहुत है, अल्लाह इसको मज़ीद दर्जे देना चाहता है, एक क्राइटेरियन है। लेकिन हदीस से जो आपको बहुत ही आसान क्राइटेरियन एक पैमाना दिखता है वो क्या है, किसी मुसीबत पे, देखिए हर एक पे आती हैं, आप पे भी आती हैं, मुझ पे भी आती हैं, हम सब पे आती हैं और आएंगी और आती रहेंगी। सारी दुनिया में दुआएं देगी ना, फिर भी मुसीबतें आनी है। हर माँ चाहती है कि बच्चे को दुख ना हो, लेकिन बच्चे गिरते हैं, बच्चों को चोटें लगती हैं, बच्चों के दांत निकलते हैं, तकलीफ से ही निकलते हैं, ये होगा। जब कोई तकलीफ आए तो उसके बाद क्या है, जब आपके ऊपर कोई तकलीफ़ आए और उसके बाद आपको अल्लाह का कुर्ब मिल जाए तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, आप पूरे उतरे। बट अल्लाह मुझे आपको माफ़ करे, कोई तकलीफ़ आई, दुख आया, एक बार आई, दो बार आई, बंदा समझ ही नहीं रहा, ट्रैक नहीं चेंज कर रहा, वही लाइफस्टाइल, वही दुनियादारी, बल्कि और ज़्यादा अनसिक्योर होकर कहता है नहीं अब आप ज़िंदगी कैसे गुजारनी है क्या, तो फिर ये अल्लाह की पकड़ है। यानी जिसको तकलीफ़ों के बाद भी रब का कुर्ब ना मिले तो वो अपने गुनाहों की सजा में है। फिर याद रखिए बहुत तरीके हैं, बाद औलाद के गुनाहों की वजह से माँ बाप या माँ बाप के किसी गुनाह की वजह से बच्चों पर आजमाइश आती है, लेकिन बहरहाल मौत की सख्तियों में बंदा पाक हो जाता है। मोमिन दुनिया से ऐसे जाता है जैसे न्यू बॉर्न बेबी। लेकिन अब फोर्थ स्टेज पे एक और मरहला है, कुछ लोग वो ऐसे हैं कि जो गुनाहों से पाक किए ही नहीं जा रहे, अभी भी उनके वो गुनाह के मामले हैं। और इसको समझने के लिए एक साइड की छोटी सी चीज़ समझ लीजिए, आप देखिए कि ये वाइट चादर है ना, अल्लाह ना करे इस पर अगर इंक थोड़ी सी गिर जाए, इसको फ़ौरन उठा के जाके पानी में रखेंगे, उम्मीद की जाती है कि सिर्फ पानी से ही दाग उतर जाएगा, ऐसे ही है ना। थोड़ी सुस्ती कर दें, इसको रख दें, एंड पे धोएंगे तो पानी के साथ साबुन लगाना पड़ेगा, और अगर कल तक ये पड़ी रहे, दो दिन पड़ी रहे, तो हो सकता है फिर इसको ब्लीच करना पड़े, भट्टी में पकाना पड़े। गुनाह इज़ जस्ट लाइक अ स्टेन, फ़ौरन धो लीजिए। इन्नमत तौबतुल्लज़ीना, अल्लाह कहते तौबा है ही उन लोगों की, ये तूबू ना मिन करीब, इधर गुनाह हुआ उधर माफ़ी मांग लेते हैं, अल्लाह माफ़ कर देता है। जब फौरी दूर कर लेंगे अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह ताला आपके मेरे गुनाह साथ साथ धुलते जाएंगे। लेकिन जो धब्बे पुराने हो जाते हैं ना, फिर उन दाग धब्बों को धोने के लिए आखिर में फिर क्या होगा, कब्र का अजाब। ये पांचवा मरहला है, फिर अल्लाह उन गुनाहों को अजाब कब्र के जरिए धोता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे क़यामत के दिन कि जिनको कब्रों में तो अजाब हुआ लेकिन इंशाल्लाह आखिर में उनको जन्नत मिल जाएगी। फिर उसके बाद एक और स्टेप भी रह जाता है, कब्र के अजाब से भी नहीं धुले कुछ दाग, तो फिर मैदान हशर, वहाँ लोगों को पसीना आ रहा होगा, बाज़ लोग उस दिन अपने पसीनों में लौटनियाँ ले रहे होंगे, मैदान हशर में गर्मी होगी, सूरज सवा नेज़े के करीब होगा, ये बातें आपने सब ने बचपन से सुनी हुई हैं, यानी उस दिन अल्लाह वहशत देगा, लेकिन फिर बच जाएंगे। और फिर एक आखिरी मरहला पुल सरात, जहन्नुम के ऊपर से वाई मिन को मिल्ला वारी दुहा। पुल सरात इज़ जस्ट लाइक अ डायसेक्शन रूम, तस्वुर में लिख लीजिए, जिसम में कोई हराम के कतरे हैं, अभी खून गंदा है, दिल में कीना है, बुगज़ है। हदीस में आता है पुल सरात जो है ना उसके ऊपर आंकड़े लगे हुए हैं, यूँ क्लूब कहते हैं हदीस में, क्लूब का लफ्ज़ है, اس میں بندہ لٹک جائے گا، ادھر سے خون رسے گا. بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ پھر کچھ لوگوں کو پاک کرے گا. اور اللہ نہ کرے ہم مسلمانوں کی نسلوں میں سے بھی کوئی ایسا ہو، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح جہنم میں گرایا جائے گا. یہ لاسٹ اسٹیپ ہوگا. پھر ان کو جتنی سزا دینی ہے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، لیکن دینے کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا، اور بالآخر وہ جنت میں جائیں گے. جہنم سے نکالا جائے گا، کوئلے بن چکے ہوں گے، اور نہر حیوان ہے جنت کے دروازے کے باہر، ان کوئلوں کو ادھر ڈالا جائے گا، اور وہاں سے پھر نئے جسم اگیں گے. اور یہ جو سب میں بتا رہی ہوں، سب کی دلیل میرے پاس موجود ہے، آپ میں سے کسی کو ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتے ہیں. بھوجل نہ لگے اس لیے میں آیتیں اور حدیثیں کوٹ نہیں کر رہی، کیونکہ ہماری یہ کیجول سی سٹنگ ہے اس وقت. لیکن بالآخر جب وہ نکلیں گے تو ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا واتقوا الرحمن، رحمان کے آزاد کردہ قیدی. جنت میں جہاں سے گزریں گے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، جیسے جیل سے کچھ دن ہو کے کوئی آئے تو سب کو پتہ لگتا ہے، پھر ان کو شرم آئے گی. جہاں جاتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے، جہاں جاتے ہیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے بعد ان کی وہ مہر اتار دے گا. لیکن بالآخر مسلمان جس کے دل میں رتی برابر رائی برابر بھی ایمان ہے، اللہ اس کو جنت ضرور دے گا. بہت سارے لوگ اس کچھ فہمی میں رہتے ہیں، کہتے بیکاز وی آر مسلم دین وی ول گو ٹو جنت. ٹھیک ہے، تو ایک جملہ نوٹ کر لیں، شاید جم بن جائے آپ کے لیے. جنت میں جانا اور بات ہے، اور بالآخر جنت میں جانا اور بات ہے. فرق کیا ہے؟ سورۃ آل عمران کی آیت ہے فمن زخزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ ہے حقیقی کامیاب. تو آج سے اپنی دعاؤں میں ایک دعا شامل کریں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ جہنم کا منہ بھی نہ دکھانا. یہ نہیں کہ جہنم کی سزائیں بھگتیں. لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ بڑے لاٹ سے کہتے ہیں چلو کچھ دن رہیں گے جہنم میں پھر تو جانا ہی ہے. تو آج جا کے سٹوف پہ صرف انگلی رکھیے، پھر آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. آج تو چاہے کہ بھاپ کیٹل میں سے پڑ جائے، کتنے دن تک چھالا پڑا رہتا ہے. آج کہاں طاقت ہے، اور یہ آگ اور وہ آگ 69 ٹائم زیادہ ہے جہنم کی آگ اس دنیا سے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر جہنمی کو جہنم سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ سکون سے سو جائے، اس کو یہ اتنی ٹھنڈی لگے گی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہی بڑی تھی، پھر اللہ نے وہ جہنم کی آگ اتنی زیادہ کیوں رکھی؟ کیونکہ اللہ نے صبر بہت کیا. دیکھیے ہمارا ملازم ذرا سی مستی کرے، ایک دن دو دن، ہم ایک مہینہ پورا کریں گے، دوسرا مہینہ چھٹی کرائیں گے، اپنے اوپر لے کر سوچتے ہیں مالک نے آج تک کیا دیا اور ہم نے کتنی مستیاں کی. آج دیکھیے جتنا اللہ کو ہم پہ اختیار ہے کہ اللہ ہمیں پکڑ نہیں سکتا. آج آپ دیکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ جیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ جیتے ہیں، یہ ہم سب دوسروں سے بہت اچھا جانتے ہیں. چونکہ وہ الصبور ہے الشکور ہے، اس لیے وہ بندے کو ان ساری چیزوں میں ڈالتا ہے.